आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉ शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जाम तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है? इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ, फौज, इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नजदीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक, आज़ादी, सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया जिसकी अक्कासी अक़वाम मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने तैप्तोलोगी के ऑर्किडियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पास जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत एमएपीपी को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा एमएपीपी रियासती सरकारों की दरखास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी जरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन एनसीसीएफ के हुक्काम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के जखीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिल शुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मियार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का इहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी हुकाम, जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुकाम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीकेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है اور یہ دنیا بھر میں جسمانی تندرستی، ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔
4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے۔ 75 سے ادھک دیش کے 500 سے ادھک ایتھلیٹس اس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ ابھی پرارمبھ بھارت سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے الگ الگ کنٹری میں اس کو بھوش میں کرا جائے گا۔ بھارت میں کامن ویلتھ کا جب آیوجن کرا جائے گا تب اس میں سودیشی اسپورٹس کے روپ میں یوگاسنا کو بھی ستھان دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ شرکا کے حصے میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ تقریب کے دوران وزیر موصوف نے پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ 2026 کے لیے ماسکٹ، جرسی اور چیمپئن شپ فلم کا بھی آغاز کیا۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ اب تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ حجاج کرام رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھا کریں گے۔ وہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ کل صبح منا واپس پہنچیں گے، جہاں وہ قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سائراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16th راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے 2rd راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحرالکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔